रक्षा खरीद परिषद ने तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। इन नौकाओं का उपयोग तटीय निगरानी और गश्त, खोज तथा बचाव कार्य के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में परिषद की बैठक में ये स्वीकृति दी गई। ये उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद की स्वीकृति सहित विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। संसद के दोनों सदनों में आज दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर में छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। लोकसभा में भाजपा तथा कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर राज्यसभा में भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुए इस मामले की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि केंद्र ने कोचिंग केंद्रों के नियमन पर इस साल जनवरी में दिशा निर्देश जारी किए थे। अगर इन दिशा निर्देशों को सुनिश्चित किया गया होता तो ऐसी त्रासदी नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग व्यवसाय बन गई है और जब भी अखबार खोलते हैं तो पहले एक या दो पन्ने कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों के होते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस त्रासदी के लिए एजेंसियों के ढुलमुल रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर लापरवाही बरतने और मॉनसून से निपटने के लिए पहले से तैयारी न करने का भी आरोप लगाया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर अध्यक्ष की गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए उनकी कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष के नेता गलतफहमियां फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक कुल 1,18,00,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल स्वीकृत आवासों में से 1,14,00,000 से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं तथा 85,00,000 से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड का मंच सहयोग और साझेदारी का आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व में स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से आज का समय चुनौतियों से भरा है और विश्वसनीय साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भी जरूरी हो गया है। पेरिस ओलंपिक में आज हॉकी के पूल बी मैच में भारत और अर्जेंटीना के बीच रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस समय बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के ग्रुप मैच में लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन केरागी से चल रहा है। लक्ष्य सेन ने पहला सेट जीत लिया है। निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के कांस्य पदक फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में रमिता जिंदल 7वें और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में अर्जुन बबूता 4थे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।